समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
इंसान जितनी बड़ी उपलब्धि चाहता है उसको त्याग भी उतना ही करना पड़ेगा। त्याग के बिना उपलब्धि केवल सपना बनकर रह जाएगी। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Mukesh, and you very rightly said, no pain, no gain. Indeed, we are here to take lots of pain, make lots of effort for our dear listeners and to make this program, this edition of Aaj Savere very, very happening over the next 30 minutes, wherein we shall bring you information about national and international news, metro city updates, and of course, lots of historical information to let you know what makes 20th January so, so very, very special. So Mukesh, let's begin the program with the news headlines.
Bilkul.
Well, the first news headline of the day, Prime Minister Narendra Modi commended India's historic achievement recently in space exploration and the growing prowess in modern space technology. Addressing the nation in his first Mann Ki Baat program of 2025 on Akashvani, the Prime Minister said that the country is setting new benchmarks in space technology, with visionary scientists and innovators providing solutions to future challenges. Hailing the Bengaluru-based Indian space tech startup Pixel for successfully launching the country's first private satellite constellation, Firefly, Mr. Modi called it a significant step towards self-reliance. The Prime Minister also applauded the flourishing startup ecosystem in the country, adding that the registration of startups in Nagaland surged by over 200% last year. On the completion of 9 years of Startup India initiative, Mr. Modi applauded the remarkable growth of country's startup culture, particularly in smaller cities.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों से हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी।
Yes, Mukesh, the D-Day is, you know, nearing in Delhi and the stress and the tension is all building up. Meanwhile, the 55th World Economic Forum, WEF, annual meeting will begin today at Davos in Switzerland. During the 5-day event, India's model of inclusive growth and digital revolution will be highlighted. Indian delegation will be spearheaded by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnaw, along with Jal Shakti Minister C.R. Patil, Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu, Food Processing Industries Minister Chirag Paswan, and Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Chaudhary. Our correspondent reports that India's impressive economic growth continues to capture global attention with significant strides across the key sectors.
डाक विभाग भारतीय संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आज से नई दिल्ली में 3 दिन का समारोह आयोजित करेगा। ये समारोह राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में होगा। इसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें प्रश्नोत्तरी, प्रदर्शनी, डाक सफारी और पत्र लेखन प्रतिस्पर्धा शामिल होगी। ये आयोजन सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए खुला रहेगा।
Yes, Mukesh, the postal services in the country for times immemorial have been the backbone of our country, of our development progress. Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya will inaugurate a 2-day international seminar on formalisation and social security coverage for workers in the informal sector in New Delhi today. The primary objective of this seminar is to enhance stakeholders' capacity in extending social protection to informal workers. The seminar will bring together a diverse group of stakeholders, including policymakers, social security administrators, and experts from social security organizations from countries in the Asia-Pacific region.
Donald Trump आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 पर होगा. कई वैश्विक नेताओं के समारोह में भाग लेने की संभावना है. भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिल बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और लॉरा बुश तथा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा शामिल होंगे.
TikTok is resuming services to its 170 million users in the US after President-elect Donald Trump said he would issue an executive order to give the app a reprieve when he takes office. Yesterday evening, the Chinese-owned app stopped working for American users after a law banning it on national security grounds came into effect. But after Trump promised to delay the implementation of the law and allow more time for a deal to be made, TikTok said it was in the process of restoring service.
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद और परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा स्टूडियो में मौजूद रहेंगे. आमंत्रित विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर 9289-094044 पर और हैशटैग #AskAIR के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं.
एंड लिसनर्स, टाइम नाउ टू नो व्हाट द इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज टू से. Well, the IMD has forecast rain and snowfall in the western Himalayas, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand due to western disturbance in the next 5 days. Talking to media, IMD scientist Dr. Naresh Kumar said there is a possibility of rain in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh, Delhi NCR and North Rajasthan on Wednesday and Thursday. IMD has also predicted gradual rise in minimum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius over plains of northwest India during the next 3 days. It has also forecast that dense fog conditions are likely to continue over Uttarakhand, West Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, East Rajasthan, Bihar, Orissa, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till the next 2 days.
और सरबजीत, अब खबरें महाकुंभ से. देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी अमृत स्नान को देखते हुए प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है. 29 जनवरी और 3 फरवरी को अमृत स्नान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने कल मेला क्षेत्र प्रबंधन की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
महाकुंभ के दौरान विशेष दिनों पर मुख्यमंत्री ने बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए पॉन्टून पुलों पर आवाजाही एक ही ओर से रखने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाए. आने वाले दिनों में प्रयागराज में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं. उन्होंने अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, शौचालयों के उचित रखरखाव और साफ सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. दूसरी ओर रेलवे अधिकारियों को 25 जनवरी से अगले महीने की 5 तारीख तक विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया. आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज.
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर. कुंभवाणी, जी हां, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल. सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर. इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर.
और आज सवेरे में वक्त है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले सरबजीत आप बताएं चेन्नई की क्या खबरें हैं।
यस मुकेश, टू एड्रेस द इंडस्ट्रियल चैलेंजेस टेक महिंद्रा लॉन्च्ड अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस सेंटर टू इम्प्लीमेंट एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस एंड इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशंस। दिस सेंटर इज डिजाइन टू अलाउ बिजनेसेस टू वैलिडेट न्यू टेक्नोलॉजीज इन अ रिस्क फ्री एनवायरमेंट। Companies will benefit by getting the optimized process, accessing return on investment, and accelerating the transition to an advanced manufacturing system. This facility marks a significant step in our efforts to support customers in adopting smart and sustainable manufacturing solutions. Directorate General of Civil Aviation has given acceptance for type certification to the electric aircraft developed by startup E-Plane Company. This is the first Indian private company to get accepted under the new rules for electric vertical takeoff and landing aircraft issued last September. The DGCA issued airworthiness criteria for type certification of vertical takeoff and landing capable aircraft and issued specifications for vertiports used by them. And Mukesh, what's the news that you're carrying for our listeners today?
Ji haan, pehle baat karte hain Mumbai ki khabron ki. Mumbai marathon mein kal Eritrea ke Berhen Tesfaye ne purushon ka khitab jeet liya, jabki Kenya ki Joyce Chepkemoi Tete ne mahilaon ka khitab jeeta. भारतीय प्रतिभागियों में अनीश थापा ने पुरुष वर्ग में पहला स्थान हासिल किया और निर्मा बेन ठाकुर ने महिला वर्ग में अपना खिताब बरकरार रखा। इस बीच बृहन मुंबई नगर निगम की 28वीं वार्षिक बागवानी प्रदर्शनी यानी पुष्प महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बायकुला में वीर माता जीजाबाई भोंसले वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर में होगा। महोत्सव में लगभग 5,000 पौधों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के फूल, फलों के पेड़ और औषधीय पौधे शामिल हैं। पालघर जिले की महिलाओं के एक समूह ने मशरूम की खेती में सफलता प्राप्त की है। बांधघर गांव की महिलाओं ने इस नई फसल से लाभ भी प्राप्त करना शुरू कर दिया है। एक वर्ष पहले एक छोटे से खेत में शुरू किया गया यह व्यवसाय अब काफी फैल गया है और ये आदिवासी महिलाएं अब इस उद्यम से एक स्थिर आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली है।
एंड मुकेश, यू नो ऑफ लेट वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट एन इंक्लूसिव सोसाइटी।
जी,
so Union Minister for Consumer Affairs, Public Distribution and Food, New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, distributed aids to the physically challenged persons under Assistance to Persons with Disabilities, ADIP program, and to senior citizens under Rashtriya Vayashri program in Dharwad yesterday. The central government agency, namely Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, had organized this program. The minister distributed motorized tricycles, pedaling tricycles, wheelchairs, cerebral palsy chairs and Sugamya intelligent sensor based canes for the visually impaired.
और अब कोलकाता महानगर की खबरें। कोलकाता की सियालदह अदालत आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में संजय राय को आज सजा सुनाएगी। पिछले शनिवार को अदालत ने संजय राय को इस मामले में दोषी ठहराया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से साबित होता है कि इस घटना में संजय राय दोषी हैं। पिछले वर्ष 8 और 9 अगस्त की रात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।
वेल, न्यूज नाउ फ्रॉम हैदराबाद। सिंगापुर बेस्ड Capital Land Group, which is a global real estate investment and development company, has announced a 450 crore rupees investment to develop a state-of-the-art 1 million square foot IT park in Hyderabad. This announcement was made following a high-level meeting in Singapore, attended by a delegation led by Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy yesterday. An official release stated that the upcoming project that is part of Capital Land's broader development pipeline in Hyderabad is expected to reinforce the city's position as a leading business and technology hub. The Chief Minister welcomed the investment, describing it as a milestone in Hyderabad's growth as a business hub. And Mukesh, what's the buzz from Delhi today?
जी हाँ, दिल्ली की खबरों में। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंध को लेकर एक आदेश जारी किया है। पुलिस के अनुसार राजधानी में 1 फरवरी तक हैंग ग्लाइडर्स, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, कम हवा के गुब्बारे और ड्रोन प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के महत्व को लेकर कल महाराजा अग्रसेन कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक वॉकेथॉन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों विशेष रूप से युवा मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। इस पहल की सराहना करते हुए पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान मतदान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सरबजीत, देश दुनिया के समाचार हो गए, चारों महानगरों के भी समाचार हो गए, और अब बारी है खेल जगत की। तो खेल जगत की हलचल लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। तो आइए अभिषेक से जानते हैं खो खो विश्व कप में हुए कल प्रदर्शन पर।
भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ अपना फाइनल मैच 54-36 के मजबूत स्कोर के साथ जीता। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने नेपाल की महिला टीम को अपने खिताबी मुकाबले में 78-40 के प्रभावशाली स्कोर के साथ हराया। भारत की दोनों टीमों का फाइनल मुकाबला नेपाल की महिला और पुरुष टीम के साथ हुआ। नेपाल की पुरुष टीम ने फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भारत के प्रदर्शन की बराबरी नहीं कर सकी। भारतीय पुरुष टीम का सफर शानदार रहा, जिसकी शुरुआत ग्रुप स्टेज में ब्राजील, पेरू और भूटान के खिलाफ बड़ी जीत से हुई। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हराकर और सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम को हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। इस टूर्नामेंट में भारत ने किसी भी मुकाबले में हार का सामना नहीं किया। दूसरी ओर भारतीय महिला टीम ने अपने फाइनल मैच में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और नेपाल के सामने मजबूत रणनीतियों का प्रदर्शन किया। उनका सफर बड़ा प्रभावशाली रहा। टीम ने ग्रुप स्टेज में दक्षिण कोरिया, ईरान और मलेशिया पर जीत दर्ज की। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हराया और सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय महिला टीम भी विश्व कप में अजेय रही। आज सवेरे के लिए अभिषेक कपिल।
और अब जानते हैं सोनाली पराशर से हॉकी इंडिया लीग में कल हुए मुकाबलों पर जानकारी।
कल रात राउरकेला में महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स ने सराची रॉयल बंगाल टाइगर्स को 4-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। ओडिशा के लिए यीबी एंसर ने 2 गोल दागे। वहीं पुरुष वर्ग में वेदांता कलिंगा लेंसर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली एसटी पाइपर्स को शूटआउट में 3-2 से हराया। निर्धारित समय के बाद मैच 5-5 की बराबरी पर था, जहां लेंसर्स ने 3 गोल के अंतर को मिटाते हुए जबरदस्त वापसी की। कलिंगा लेंसर्स के लिए हेनरिक्स और ब्रिंकमैन ने 2-2 गोल दागे। हॉकी इंडिया लीग में आज रात महिला वर्ग में सूरमा हॉकी क्लब और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच शाम 6 बजे और पुरुष वर्ग में सराची रॉयल बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब के बीच रात 8:15 बजे रांची में मुकाबला होगा। आकाशवाणी के लिए मैं सोनाली प्राशर।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और सरबजीत कौर के साथ। और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं सरबजीत
जी।
तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा। सवेरे के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और चलते हैं मुंबई, तो मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये बात हुई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। सरबजीत आप बताएं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहेगा मौसम?
जी मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर्स अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम मे गो अप टू 30 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन अर्ली मॉर्निंग। द मिनिमम टेम्परेचर अराउंड 16 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम अराउंड 26 डिग्रीज। एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव partly cloudy sky with haze. The temperatures will hover between a minimum of 14 degrees and a maximum of around 28 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन इतिहास बन गई। आज 20 जनवरी है। आज ही के दिन 1265 में इंग्लैंड में संसद की पहली बैठक शुरू हुई थी।
20th January 1817, Ram Mohan Roy started Hindu College in Calcutta with the help of Justice H. East David Hare. This college was later renamed as the Presidency College.
1887 में आज ही के दिन अमरीकी सीनेट ने पर्ल हार्बर को नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी थी। 1892 में पहली बार बास्केटबॉल खेल खेला गया था। और 1950 में आज ही के दिन दक्षिण अमरीकी देश सूरीनाम नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था। और 1952 में ब्रिटेन की सेना ने मिस्र के शहर इस्माइलिया और स्वेज नगर पर कब्जा किया था।
1957, 20th January, first Indian atomic reactor Apsara at Trombe, Mumbai was dedicated to the nation.
1972 की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश और मेघालय राज्य बना था आज ही के दिन। और 1980 में अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार किया था। 1982 में आज ही के दिन मध्य अमरीकी देश होंडुरास में संविधान प्रभावकारी हुआ, जबकि 1990 में आज ही के दिन सोवियत सैनिकों ने अजरबैजान की राजधानी बाकू पर धावा बोला और इस घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई थी।
20 January 1999, renowned playwright Girish Karnad was selected for the 1998 Gyanpeeth Award.
2006 की बात करें तो नासा ने प्लूटो के बारे में और जानकारी के लिए न्यू होराइजन यान को प्रक्षेपित किया, जबकि 2007 में अफगानिस्तान में सीमांत गांधी के नाम पर संग्रहालय स्थापित किया गया। 2008 में बॉलीवुड अभिनेता देवानंद को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 2009 में बराक ओबामा ने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। और 2010 में गुरुदत्त की फिल्मों चौदहवीं का चांद, कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम आदि को फिल्माने वाले सिनेमाटोग्राफर वी के मूर्ति को वर्ष 2008 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। 1969 में शुरू हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया था। और भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाएं भी आज ही के दिन शुरू हुई थी। और 2018 में भारत ने आज ही के दिन लगातार दूसरी बार नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता। और आज सवेरे में अब वक्त हुआ है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सरबजीत, सबसे पहले हम याद कर रहे हैं अपनी सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध ठक्कर बप्पा को। उनकी सेवा भावना का स्मरण करके ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जब जब निस्वार्थ सेवकों की याद आएगी, ठक्कर बप्पा की मूर्ति आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। देश की स्वाधीनता के बाद ठक्कर बप्पा कुछ समय तक संसद के सदस्य भी रहे थे।
मुकेश, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टूडे अब्दुल गफार खान, ऑल्सो नोन एज बादशाह खान. He was an, the Indian independence activist and he was a political and spiritual leader known for his non-violent opposition and lifelong pacifism. And due to his similar ideologies and close friendship with Mahatma Gandhi, Abdul Ghaffar Khan was nicknamed as Sarhadi Gandhi or the Frontier Gandhi. And Abdul Ghaffar Khan also founded the Khudai Khidmatgar, an anti-colonial non-violent resistance movement.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और दक्षिण भारत की झांसी की रानी कही जाने वाली अंजलाई अम्मल को। स्वतंत्रता के लिए जोरदार संघर्ष करने वाली भारतीय वीरांगनाओं में अंजलाई अम्मल भी एक थी। अंजलाई अम्मल 1921 में गैर सरकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए दक्षिण भारत की पहली महिला थी। उन्होंने अपनी पारिवारिक भूमि, उनके अपने घर को भी बेच दिया और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के लिए अपना धन खर्च किया। 1927 में उन्होंने नीलन की मूर्ति को हटाने के संघर्ष में भाग लिया। नीलन की मूर्ति को हटाने के लिए जो संघर्ष हुआ, उसमें भाग लेने के लिए उन्हें अपने 9 वर्षीय बच्चे अम्मा कणु को साथ लेकर जाना पड़ा था। गांधी जी ने अम्मा कणु का नाम लीलावती रखा था और उन्हें उनके साथ वर्धा आश्रम ले आए। 1930 में नमक सत्याग्रह में उनकी भागीदारी के कारण वो बुरी तरह घायल हो गई थी।
लिसनर्स, वी आर ऑल्सो पेइंग ट्रिब्यूट्स टुडे टू सूबेदार एंड ऑनररी कैप्टन Karam Singh, recipient of the Paramveer Chakra and the Military Medal. Singh joined the army in 1941 and took part in the Burma campaign of World War II, receiving the Military Medal for his actions during the Battle of the Admin Box in 1944. He also fought in the Indo-Pakistani War of 1947 and was awarded the Paramveer Chakra for his role in saving a forward post at Richmar Gali, south of Tithwal. In fact, Singh later rose to the rank of Subedar and was conferred the rank of honorary captain. Singh was one of the 5 soldiers chosen to raise the Indian flag for the first time after independence in 1947.
और आज ही पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा की। वो बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बहुचर्चित शारदा एक्ट के प्रकल्पक थे। हरविलास जी समाज सेवा के क्षेत्र में आरंभ से ही अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में उन्होंने काम किया था। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदू सुपीरियरिटी है और इस ग्रंथ में उन्होंने सब प्रमाण सिद्ध किया है कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हिंदू सभ्यता अन्य देशों से बहुत आगे थी।
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टूडे तेज बहादुर सप्रू, इंडियन फ्रीडम फाइटर, लॉयर एंड पॉलिटिशियन. He was a key figure in India's struggle for independence, helping draft the Indian Constitution. He was the leader of the Liberal Party in British-ruled India. And Tej Bahadur Sapru, born on 8 December 1875 in Aligarh, in the northwestern provinces of British India. Sapru being the only son of Ambika Prasad Sapru. And in fact, you know, Sapru contributed to the drafting of the Indian Constitution, a great, great a freedom fighter, a great lawyer, and also a great politician. Listeners, also time to pay tributes to the great Krishnaji Ganesh Fulmbikir, popularly known as Master Krishna Rao, a musical genius, an Indian vocalist, classical musician, and composer of Hindustani music. He was credited with the creation of 3 Hindustani ragas and several bandishes.
वंदे मातरम् सुजलाम सुफलाम मलजज शीतलाम सकशा.
और भारत के श्रेष्ठ जासूस रामेश्वर नाथ काव की आज पुण्यतिथि है. उन्होंने भारत की गुप्तचर संस्था रॉ रिसर्च और एनालिसिस विंग को स्थापित किया था. सन 1950 के दशक के मध्य में रामेश्वर नाथ काव कश्मीर प्रिंसेस की जांच और 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान जैसे मामलों से जुड़े थे. उन्होंने रॉ की 2 पीढ़ियों को जासूसी के गुण सिखाए. उनकी टीम को काव बॉयज कहा जाता था. रामेश्वर नाथ काव भारत की 3 प्रधानमंत्रियों के करीबी सलाहकार और सुरक्षा प्रमुख रहे. उनके कुशल नेतृत्व और उनकी टीम की कुशल रणनीति की वजह से ही 3000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का भारत में विलय कराया गया था. और हिंदी की प्रसिद्ध फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री परवीन बॉबी की आज पुण्यतिथि है. परवीन बॉबी 1970 से 80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने कई फिल्में सुपरहिट फिल्में की हैं. तो क्यों ना उनकी फिल्म का पहले एक गाना सुन लिया जाए.
जी
और 1972 में परवीन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई थी. और उनकी जो प्रमुख फिल्में रही उनमें मजबूर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, कालिया, मेरी आवाज सुनो, नमक हलाल, अशांति खुद्दार और रंग बिरंगी शामिल हैं. तो क्यों ना नमक हलाल का उनका एक एक डायलॉग भी सुन लिया जाए.
मेरी आवाज में सिर्फ मौत की हिचकी सुनना चाहता हूँ.
मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू, गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप है और आपको पाते ही खो रही हूँ. मैं जानती हूँ आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जान की हिफाजत के लिए मैं आपसे अपनी जान की चंद दिनों के लिए भीख मांग रही हूँ.
Listeners, today is also the birth anniversary of Ratanji Jamshedji Tata, industrialist, philanthropist. Ratanji Jamshedji Tata was the younger son of Jamshedji Tata, the founder of the Tata Group.
और प्रसिद्ध नाटककार, रंगमंच निदेशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक रतन थियम की आज जयंती है. उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ कई नाटकों का निर्देशन भी किया था. इसके अलावा हिंदी साहित्यकार स्वयं प्रकाश की आज जयंती है. मुख्य रूप से उन्होंने कहानीकार के रूप में प्रसिद्धि पाई है. और भारतीय फिल्म अभिनेता उप्पलपट्टी वेंकट कृष्ण राजू की भी आज जयंती है. और उन्होंने व्यापक रूप से जो विद्रोही स्टार के लिए उन्होंने विद्रोही अभिनय शैली की है.
एंड लिसनर्स, टुडे इज द बर्थडे ऑफ नादिरा बब्बर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर इन हिंदी सिनेमा एंड द रिसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड.
और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उर्दू की प्रसिद्ध लेखक कुर्तैन हैदर की भी आज जयंती है. तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आज का सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए. तो मुकेश कुमार और सरबजीत कौर को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत.
नमस्कार, नमस्कार.